ओम शांति। अभी बहुत ही सुंदर अनुभव के साथ हम इस यात्रा की ओर आगे बढ़ेंगे कि हमारा अविनाशी साथी इटर्नल कंपेनियन, और जब उस कंपेनियन का साथी का परिचय प्राप्त हो जाता है तो स्वतः ही उनके साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है। तो चलिए पुनः एक यात्रा, मन को शांत कर ले, स्थिर कर ले। आज हम ट्रैफिक सिग्नल के आधार पर मेडिटेशन की गहराई का अनुभव करते हैं। आप इस बात को तो महसूस कर रहे हैं कि आप शरीर नहीं, लेकिन शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। आप रास्ते में फोर व्हीलर से यात्रा कर रहे हैं, आपको रेड सिग्नल दिखाई देता है। मन को ऑर्डर दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। रेड, रिलैक्स, रिलैक्स। यहां जो भी आपने श्रेष्ठ विचार सुने हैं उनका चिंतन, वो आपको रिलैक्स कर रहा है। और कुछ समय के बाद येलो लाइट होती है, योर आइडेंटिटी, मैं कौन हूं, एक चेतना, रूह और जिस्म का अजीब इत्तेफाक है, उम्र भर साथ रहे पर रूबरू न हो सके, पर मैं आज अनुभव कर रही हूं कि मैं एक चेतना हूं। और फिर ग्रीन लाइट, गॉड रियलाइजेशन, उस परम शक्ति, परम सत्य, परमात्मा का अनुभव। यही भाव कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस ना का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला, जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो हर धर्मों का सुख है। एक वाहेगुरु, एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक हैं। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। और आज हम द इटर्नल कंपेनियन, मेरा अविनाशी साथी, उस गहराई में जाएंगे इस भाव के साथ। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते हैं। सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किस ने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिकरात है। सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। शांति शांति शांति। ओम शांति ओम शांति ओम शांति।
सभी फ्रेश हैं, तैयार हैं आगे के सेशन के लिए। हमारे बीच में पहुंचे हैं बिलासपुर से मंजू बहन। आप ब्रह्मा कुमारीज में सीनियर राजयोगा मेडिटेशन टीचर है। हम सब करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज सुबह का जो सत्र था, अर्ली मॉर्निंग सेशन, जिसमें हम खुद से रूबरू हुए थे, और अभी के सत्र में हम खुदा से रूबरू होंगे। हम सब भगवान को याद करते हैं, क्योंकि कहते हैं आत्मा को जाने बिना परमात्मा को जानना इम्पॉसिबल है। हम सब भगवान को याद करते हैं। आप सभी करते हैं किसी न किसी रूप से, बड़े प्यार से, बड़ी भावना से हम सब भगवान को याद करते हैं। पर शायद उनकी सही पहचान, उनकी पूरी पहचान नहीं है, इसलिए पूरी प्राप्ति नहीं होती है। क्या आप इस बात को मानते हैं? मानते हैं? क्या मैं सही बोल रही हूं? तो चलिए आज हम जानेंगे मंजू दीदी से कि परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, और हमारा उनसे क्या संबंध है। तो मैं बहनों से अनुरोध करूंगी कि बैज और बुके द्वारा दीदी का सम्मान करेंगे और हम तालियों द्वारा साथ देंगे। आपने आकाशवाणी, रेलवे ट्रेनिंग सेंटर, जिला प्रशासन, जिला पुलिस, रेलवे पुलिस, स्कूल, कॉलेजेस और अन्य कई स्थानों पर और कई विषयों पर अनेक टॉक्स दिए हैं। अनेक अभियान जैसे अखिल भारतीय शिक्षा अभियान, अखिल भारतीय महिला सशक्तिकरण में आपने भाग लिया है, और कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित भी किया गया है, जैसे योग नारी शक्ति एवं नारी रत्न। दीदी के लिए हम तालियां बजाएंगे। कहते हैं संस्कार रहित जीवन वन है, संस्कार युक्त जीवन उपवन है, शील और सदाचार से युक्त जीवन नंदन वन है। तो ऐसी श्रेष्ठ संस्कारों की धनी हमारी मंजू बहन है, मंजू बहन है। तो आइए, हाँ जरूर, सभी तालियों से दीदी का फिर से सम्मान और स्वागत करेंगे। आप बहुत दूर से हमारे बीच में आए हैं। तो चलिए आज के सुंदर विषय, आज का विषय क्या है, द इंटरनल कंपेनियन, इस विषय पे हम दीदी से सुनते हैं।
ओम शांति। मुस्कुरा के कहें ओम शांति। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि जो भी हमारा साथी हो वो हमारा बहुत ख्याल रखे, हमें बहुत प्यार करे, और कभी भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसी परिस्थिति आए तो वो एक सच्चा दोस्त बनकर हमारे दुख के आंसू भी पहुंचे। सभी चाहते ऐसा साथी। और जब जीवन में भी एक साथी की खोज होती है एक एज में, तब भी पेरेंट्स सोचते हैं कि बेटी को अच्छा वर मिलना चाहिए, और बेटे के लिए भी पेरेंट्स सोचते हैं कि अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए, सभी चाहते हैं। हम सबको इस बात का ज्ञान जरूर है कि ये संबंध हमारे विनाशी ही है, अविनाशी नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन यात्रा में चाहे 60 साल, 70 साल, 80 साल, जितना भी हमारा जीवन हो, हमारा कंपेनियन बहुत अच्छा होना चाहिए। सब मानते हैं इस बात को? तो हाथ उठाइए। सभी मानते हैं, ठीक। लेकिन कई बार इस कलयुग के समय में देखा जाता है कि 15 दिन या एक महीने भी वो मैरिज वाली लाइफ सही रीति नहीं चल पा रहे हैं। आप लोगों को इसका अनुभव और भी ज्यादा होगा। हमारे पास भी कई लोग काउंसलिंग के लिए जब आते हैं तब पता चलता है कि कहीं स्त्री का दोष है तो कहीं पुरुष का दोष है। लेकिन आज मॉर्निंग सेशन में आप सबने जाना कि मैं कौन, बड़ी गहराई में श्रेया बहन ले गए कि हम शरीर नहीं है, परंतु शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा है, चेतना है, सोल है, बीइंग है, एनर्जी है, इसके बारे में जाना। लेकिन साथ साथ सभी एक दिन में ही यहां इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि वाकई में इस शांत वातावरण में मुझे ये फील हो रहा है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई नई बात बताई गई। आपने गीता में भी सुना है कि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकते, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वो मैं हूं। लेकिन क्या जीवन पर्यंत हमें ये याद रहते हैं, रोज याद आते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं? कई बार मैं बचपन में देखती थी कि पार्थिव शरीर है और आत्मा निकल चुकी है और कोई व्यक्ति उनके सामने गीता सुना रहा है। इधर जिनके अंदर दर्द है वो रो रहे हैं, वो गीता के श्लोक भी नहीं सुन रहे हैं, और जिस देह के सामने वो श्रीमद् भगवत गीता सुनाई जा रही है वो आत्मा भी उस देह का त्याग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी सुना रहे हैं क्योंकि मानते हैं कि वो आत्मा भी आसपास होगी और वो इस ज्ञान के संस्कार को लेकर के जाएगी। तो ये जाना था हमने कि आत्मा एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करती है, और समझा भी था कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य अन्यानि सयाति नवानि देहि। यानी आत्मा एक वस्त्र छोड़कर दूसरा वस्त्र धारण करती है। ये बहुत अच्छे से हम अभी अनुभव भी कर रहे हैं। अब देखिए कि हर को अगर मैं पूछूं, चाहे उनके पिता अभी जीवित हैं या आगे की यात्रा की ओर भी निकले हैं, तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि आपके पिता का नाम क्या है, आपको कुछ सोचना पड़ेगा? बताइए, सोचना पड़ेगा पिताजी के नाम को? नहीं, वो क्या करते थे या करते हैं आप तुरंत बताएंगे, वो कहां रहते हैं ये भी आप तुरंत बताएंगे। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि जिन्हें हम परम पिता कह रहे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि वो कौन है, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, तो सबके अंदर अलग 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 उत्तर आने लगेगा। जबकि जाने अनजानेपन में हम सबके मुख से निकलता है सबका मालिक, सबका मालिक एक है, गॉड इज वन। तो जब वो एक है तो उसका परिचय भी क्या होगा, एक ही होगा, उसके भिन्न भिन्न परिचय नहीं हो सकते। अब प्रश्न उठता है कि परमात्मा का यथार्थ परिचय दे कौन। जैसे अभी दीदी बता रही थी कि आज आपको खुदा का परिचय मिलेगा, तो खुदा यानी जो खुद आकर इस धरा पर अपना परिचय देते हैं, क्योंकि हम सब, हम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, हम सब उस परम सत्य परमात्मा का जो एक है उसका परिचय यथार्थ रीति नहीं दे पाएंगे। जो हमने बचपन से सुना, जो दादा दादी को करते हुए देखा, जो पेरेंट्स को करते हुए देखा, उस आधार पर हम उनका परिचय दे देंगे कि हम इनको स्वीकार करते हैं, इनको स्वीकार करते हैं। तो आज के विषय में मेरा ये उद्देश्य नहीं रहेगा कि मैं आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, बिल्कुल नहीं रहेगा। क्योंकि शुरू में ही मैंने वो गीत गाया कि ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो हम भी इस भावना को स्वीकार करते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन इस विषय को शुरू करने के पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने जीवन में एक निस्वार्थ प्रेम को स्थान देंगे, तभी आप इस प्रेम की गहराई में उतर पाएंगे। थक तो नहीं गए, नहीं तो थोड़ा खड़ा करवा के एक्सरसाइज करवा दो, सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है ना? नहीं तो जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा, है ना? और इस प्यार के गीत के आधार पर ही हम परम सत्य परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा दृष्टांत मुझे याद आता कि एक बार एक पेंटर ने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई, तो सभी देख करके बहुत प्रशंसा कर रहे थे। तो दरवाजे की पेंटिंग थी वो, और उस दरवाजे में हैंडल नहीं था। तो एक व्यक्ति ने उस पेंटर को कहा कि ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी, लेकिन आप शायद भूल गए इसमें हैंडल बनाना। अगर हैंडल बनाया होता तो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं ये एहसास होता। तो उस पेंटर ने कहा कि हमेशा प्रेम के दरवाजे जो हैं वो भीतर की ओर खुलते हैं, इसीलिए मैंने हैंडल नहीं बनाया। ताली नहीं बजाते, बता दिया ना कल ही कि ताली बजाते हैं तो हस्तों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबते हैं। तो आप भी याद रखें कि सामने वाले से मुझे प्रेम मिले या न मिले, मुझे प्रेम के सागर परमात्मा के साथ जुड़कर उस प्यार को बांटना होगा। क्योंकि जिसके पास जो होता है वो दूसरों को वही देता है। मेरे पास क्रोध होगा तो मैं क्रोध बांटूंगी, और मेरे पास प्रेम होगा तो मैं प्रेम बांटूंगी। तो और बातें तो सारी इसी के ऊपर चल ही रही है। तो आज दिल के दरवाजे खोल के रखिएगा। और आज 9 अगस्त है और इस बात की गहराई में अगर आप उतर गए कि वो परम शक्ति परमात्मा कौन है, उनके साथ मेरा क्या संबंध है, वो कहाँ रहते हैं, तो आपकी खोज समाप्त हो जाएगी और यात्रा चलेगी। है जैसे देखिए, आप मार्केट जाते हैं, आपको कोई चीज लेनी है, खरीदनी है, तो आप कुछ दुकानों में जाते हैं, या तो आप किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं या किसी चीज को रिजेक्ट करते हैं। आज जो विषय चलेगा, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए। एक बात जरूर कहूंगी कि ये 1 घंटा आपको एक्सपेरिमेंट करना है। कर सकेंगे एक्सपेरिमेंट? और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको फील होगा कि खोज खत्म हुई, यात्रा की शुरुआत हुई। और ये उत्तर आपके ही मुख से हम निकलवाने की कोशिश करेंगे और आप उत्तर देंगे देंगे। मुझे विश्वास है कि परमात्मा कौन है। तो एक बार भगवान ने एक मीटिंग बुलाई, उसमें पशु पक्षियों को बुलाया लेकिन मनुष्य को नहीं बुलाया, क्योंकि मनुष्य थोड़ा विवेकवान और चतुर भी होता है और किसी भी बात के लिए वो युक्ति निकाल लेता है। तो विषय था भगवान का कि उस परम सत्य को मैं कहाँ छिपा कर रखूं, उस परम सत्य को मैं कहाँ छिपा कर रखूं जो मनुष्य की पहुंच से दूर हो। तो गिद्ध आया, उसने कहा, भगवान वो परम सत्य आप मुझे दे दीजिए, मैं उस परम सत्य को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचा के आ जाता हूं। तो भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मनुष्य ना चांद तक पहुंच गया है, तो वो परम सत्य मैं तुमको नहीं दे सकता। फिर मछली आई, मछली ने कहा, ऐसा कीजिए भगवान कि आप उस परम सत्य को मुझे दे दीजिए, मैं सागर की गहराई में छिपा कर आ जाती हूं। तो भगवान ने कहा, नहीं, मनुष्य तो सागर की गहराई में भी पहुंच चुका है, वो परम सत्य मैं तुम्हें नहीं दे सकता। छुछुंदर आया, छुछुंदर ने कहा कि भगवान मुझे दे दीजिए वो परम सत्य, मैं धरती की गहराई में छिपा कर आ जाता हूं। तो भगवान ने कहा, नहीं, मनुष्य धरती को भी खोद रहा है और वो वहां तक भी पहुंच गया है, तो मैं वो परम सत्य तुम्हें नहीं दे सकता। उसी समय एक बुजुर्ग कछुआ आया और उसने कहा, भगवान बुरा न माने तो एक बात कहना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, हाँ बोलो। तो उस कछुए ने कहा कि ऐसा कीजिए कि उस परम सत्य को आप मनुष्य के दिल में छिपा दीजिए और मनुष्य कभी भी दिल की गहराई में झांक करके नहीं देखेगा। और भगवान ने वैसा ही किया और उस परम सत्य को मनुष्य के दिल में छिपा दिया। ठीक, कौन सा दिल? ये जो लेफ्ट साइड में धड़कता रहता है, वो वाले दिल में। दीदी ने आत्मा का परिचय दिया ना, तो मन बुद्धि संस्कार के बारे में भी बताया, तो एक आत्मा का भी दिल होता है और इस दिल को लेकर के कई मूवी भी बनी है। तुम हमारे दिल में रहते हो, है ना, या दिल। तो ये दिल की बात नहीं है, आजकल तो ऑपरेशन कर दिया जाता है, दूसरा हार्ट डाल दिया जाता है, तो ये दिल आत्मा का दिल है। और इस दिल में अगर प्यार उत्पन्न होता है, पॉजिटिव हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, परमात्मा प्यार की अनुभूति होती है, तो उसकी रचना से भी स्वतः ही प्यार उत्पन्न होने लगता है। तो हम चूंकि थोड़ा सा एक परिचय में मैं आपको बता दूं कि मैं स्कूल में पढ़ाती भी थी, टीचर भी थी, प्रिंसिपल भी थी, तो मुझे एक आदत हो गई है थोड़ा सा पूछने की, ये विषय पूरा चलेगा, नए भाई बहन पुराने नहीं, नए जो है वो उत्तर देंगे, ताकि हमें समझ में आ जाएगा कि इस विषय को आप इतना गहराई से सुन रहे हैं या नहीं। तो दोनों कान खोल करके सुनिए और दिल की गहराई में उस बात को समाते जाइए। देखिए, एक बार एक व्यक्ति एक कार्टून देख रहा था, तो उस कार्टून में परम सत्य परमात्मा को लेकर के कई बातें लिखी हुई थी। 6 कॉलम बने हुए थे और 6 कॉलम में अलग 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 बातें लिखी हुई थी। तो पहले कॉलम में लिखा था, नेचर इज गॉड, प्रकृति ही भगवान है। दूसरे कॉलम में लिखा था, आत्मा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तीसरे कॉलम में लिखा था, परमात्मा सर्वव्यापी है, कण कण में भगवान। चौथे कॉलम में लिखा था, साकार रूप ही परमात्मा का है, जो साकार 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन आता है। पांचवे कॉलम में लिखा था, परमात्मा निराकार है। और लास्ट कॉलम में लिखा था कि परमात्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं, और अगर है तो कोई मुझे बता दे। तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो गया, नेचर इज गॉड, आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी है, साकार रूप ही परमात्मा का है, परमात्मा निराकार है, या परमात्मा है ही नहीं। आप में से कौन मानते हैं कि परमात्मा है, कोई एनर्जी है, वो हाथ उठाइए। आप लोग नहीं मानते है, लंबा हाथ उठाइए, थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी, किसी को नींद आ रही है तो नींद भी भाग जाएगी, ठीक है। तो हम सभी मानते हैं कि वो एक एनर्जी है। आपने बचपन में एक दृष्टांत तो सुना होगा कि एक बार अंधे बच्चों को मास्टर जी ने हाथी के बारे में बताया। अब बेचारे हाथी को देख तो नहीं सकते थे, लेकिन सभी ने छू छू कर बताया कि हाथी कैसा दिखता होगा। किसी ने पूंछ छुई तो कहा हाथी रस्सी जैसा है, किसी ने पैर छुए तो कहा हाथी खंबे जैसा है, किसी ने पेट छुआ तो कहा हाथी दीवार जैसा है, किसी ने कान छुए तो कहा हाथी सुपड़े जैसा है, किसी ने सूंड छुए तो शायद उसने कभी सर्प को छुआ होगा, तो उसने कहा हाथी सांप जैसा है। आपसे प्रश्न करती हूं कि क्या हाथी रस्सी जैसा है? ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे? नहीं। हाथी खंभे जैसा है? हाथी दीवार जैसा है? हाथी सुपड़े जैसा है, या हाथी सर्प जैसा है? तो न तो पांचों अलग अलग सत्य हैं और न ही पांचों मिलाकर सत्य हैं। हाथी तो हाथी जैसा ही है, ऐसी खुदा परमात्मा, वो परमात्मा जैसा ही है, लेकिन वो एक है। तो इस प्रश्न को बने रहने दीजिएगा लास्ट तक, उत्तर आज ही निकल करके आ जाएगा कि परमात्मा कौन है, उसका रूप क्या है, उसका धाम क्या है। अनूप जलोटा का आपने एक भजन सुना होगा कि अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। है वो एक, लेकिन जिसकी जो भावना रहे, परमात्मा तो सबके पिता है ना, तो उस पिता ने सबकी भावना को पूरा किया। लेकिन है वो एक। तो आज आपको परमात्मा को परखने के 5 कसौटी देते हैं। ऐसे नहीं कि मैं कहूं और आप मान लें, नहीं, आपको कसने उस कसौटी में। यहां अंधविश्वास के आधार पर हमको निर्णय नहीं लेना है, विवेक और भावना दोनों का प्रयोग करना है। तो सबसे पहली कसौटी, परमात्मा वो जो सर्व धर्म मान्य हो, ठीक है, जो सर्व धर्म मान्य हो, जिसे हिंदू भी माने, मुसलमान भी माने, क्रिश्चियन भी माने, सिख भी माने, पारसी भी माने, हम उसे परमात्मा कहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि हिंदू मानता हो लेकिन क्रिश्चियन न माने, क्रिश्चियन मानते हो लेकिन सिख न माने। तो परमात्मा का ऐसा कौन सा रूप है जिसे सब धर्म में स्वीकार किया गया है, ये पहली कसौटी है। सर्वधर्म मान्य, आप लोग भी बोलिएगा सर्वधर्म मान्य। दूसरी कसौटी कि परमात्मा वो जो सर्वोच्च हो, उससे ऊंचा कोई ना हो, जो सर्वोच्च हो। अगर उनसे भी कोई ऊंचा हो गया तो फिर उनको परमात्मा कहना पड़ेगा, तो जो सर्वोच्च हो। तीसरी कसौटी जो सर्वोपरि हो, सर्वोपरि यानी देखिए हम सब है ना सुख दुख के प्रभाव में आते हैं। कोई है यहाँ पर ऐसा जो जीवन में कभी रोया ना हो, वो हाथ उठाइए, जिसके कभी आंसू ना निकले हो, है कोई ऐसा? नहीं ना। जीते तो बहुत खुशी हुई और हार गए तो दुख हुआ हो, ऐसे ही है ना हम सब। कभी हम बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत दुखी भी हो जाते हैं। तो परमात्मा अगर इस प्रभाव में आ जाए तो हमें दुखों से छुड़ाएगा कौन? तो इसीलिए वो सर्वोपरि है। सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जयो ततो युद्धाय जस्व नैवम पापम अवाप्यसे। हमें भी वैसा बनना है लेकिन प्रभाव पड़ता है अभी इस वातावरण में। स्वामी भाई, गिरीश भाई, श्रेया बहन, हमारी बड़ी दीदियां सब क्लास करा रहे हैं। आप दृढ़ संकल्प कर रहे हैं, नहीं घर जाके ना बिल्कुल दृढ़ता, लेकिन फिर कभी कोई परिस्थिति आती है तो हम थोड़ा हिल जाते हैं, है ना? लेकिन अब एक बनने का प्रयास चलेगा, नर्सरी से KG 1 में, KG 1 से KG 2 में धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उस परम शक्ति परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर वो पावर हमें प्राप्त होगी। ये 3 कसौटी। चौथी कसौटी लिख भी सकते थे आप इस 5 पॉइंट को, अगर डायरी पेन है तो। चौथी कसौटी कि परमात्मा वो जो सर्वज्ञ हो, सर्वज्ञ जिसको सब बात का ज्ञान हो, जो हमें भी ज्ञान देते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, शरीर से अलग एक आत्मा हो, और आत्मा भी अविनाशी है, शरीर विनाशी है, और विषय क्या चल रहा है, द इटर्नल कंपेनियन, उस अविनाशी साथी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। और सोच लीजिए उस अविनाशी साथी का परिचय मिल गया, कनेक्शन जुड़ गया, तो जीवन खुशियों से क्या हो जाएगा, भरपूर। इसलिए आप सबके चेहरे देखते हैं ना यहाँ पर, तो मुस्कुराते हुए देखते हैं, क्योंकि रोज परमात्मा प्यार की पालना में वो पल रहे हैं। तो परमात्मा सर्वज्ञ, और पांचवी कसौटी, परमात्मा वो जो सर्व गुणों में अनंत हो, उनके जैसा गुणवान कोई ना हो। अच्छी है कसौटी। इस आधार पर उत्तर निकल करके आएगा या नहीं बताइए। पहली कसौटी सर्वधर्म मान्य, दूसरी सर्वोच्च, तीसरी सर्वोपरि, चौथी सर्वज्ञ, और पांचवी सर्व गुणों में अनंत। तो चलिए इन पांच कसौटियों के आधार पर हम बहुत शॉर्ट में, जो शुरू में हम छह बातें ले रहे थे कि एक व्यक्ति ने वो छह कॉलम देखे, कार्टून देखा, तो सबसे पहली बात थी नेचर इज गॉड, इसको पांच कसौटियों पर कसे। तो आज हम प्रकृति के लिए कहते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। उत्तर निकल गया कि प्रकृति रचना है, तो रचना रचयिता नहीं हो सकती है, क्रिएटर अलग है और क्रिएशन अलग है। हम क्रिएशन में, इस संसार का खेल तीन सत्ताओं के आधार पर चल रहा है, परमात्मा, आत्माएं और प्रकृति। तो हम कहते हैं ना गीत में, वो कौन चित्रकार है, वो कौन चित्रकार है, कितनी सुंदर प्रकृति बनाई है। तो प्रकृति की निश्चित रूप से हिंदू शास्त्रों में पूजा है, मान्यता है, क्योंकि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ देती है, और हमसे कुछ रिटर्न में नहीं लेती है। लेकिन पूरे संसार को कहा जाए कि प्रकृति ही भगवान है, तो वो हमारी बात को स्वीकार करने वाले नहीं है। प्रश्न कौन से, परमात्मा कौन है, और परमात्मा का कौन सा रूप है जिसे सब धर्म ने स्वीकार किया है। तो प्रकृति सर्वोच्च भी नहीं है, प्रकृति को ये नहीं पता मैं कैसे बनी, प्रकृति सर्वोपरि नहीं, सर्वज्ञ नहीं, और सर्व गुणों में अनंत भी नहीं। क्यों, देख रहे हैं अभी, देखो अचानक बादल फटते हैं, उत्तराखंड में जो स्थिति हुई, लोग एंजॉय कर रहे, जा रहे हंसी खुशी, लेकिन अचानक क्या हुआ, जल तत्व ने, आकाश तत्व ने, धरती तत्व ने प्रकोप दिखाया, प्रकृति ने बहुत कुछ दिया, लेकिन हमने प्रकृति पर अत्याचार किए। आज इस बात का भी संदेश देती हूं यहां से कि जितने फर्नीचर आपके यहां हो ना, कम से कम आप सभी उतने पौधे लगाकर पेड़ बन जाए, उतना तो हम तैयारी करें ना, और ये अभियान तो चल ही रहा है। तो प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, तो प्रकृति को नमन है, परंतु प्रकृति परमात्मा नहीं है, लेकिन प्रकृति की हम पूजा करते हैं क्योंकि वो हमें बहुत कुछ देती है। आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सर्वव्यापी है, कितनी अच्छी भावना है ये, कितनी अच्छी भावना है ये। मैंने शुरू में कहा ईश्वर अपने साथ है। कभी हम आते हैं बिलासपुर से, मान लीजिए अकेले निकले, तो लोग कहेंगे, भाई बहन कहेंगे, दीदी अकेले जा रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं, ईश्वर हमारे साथ है। तो इस भावना को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन देखिए आज दुनिया में जो इतने गलत कर्म हो रहे हैं, तो क्या एक के अंदर बैठा हुआ परमात्मा दूसरे परमात्मा के साथ गलत कर्म कर रहा है क्या? आज एक द्रौपदी की बात नहीं, अनेक द्रौपदियों की लाज लूटी जा रहे हैं। जब मैं सुनती हूँ तो पेपर ही पढ़ना बंद कर दिया। फ्रंट पेज पर आप देखेंगे कई बार एक पिता अपने बच्ची के साथ, एक वर्ष की बच्ची के साथ गलत कृत्य करता है, वो बच्ची की डेथ हो जाती है और वो उसको जंगल में जाकर गाड़ करके आ जाता है। तो क्या परमात्मा के अंदर वो विकार उत्पन्न हुआ था क्या जो उसने दूसरे परमात्मा के साथ ऐसा किया? एक बात बता रही, ये भावना है, मानिए इस भावना को कि ईश्वर हमारे साथ है। लेकिन एक होता है भावनात्मक सत्य और एक होता है सैद्धांतिक सत्य। और यहाँ जो ईश्वर का परिचय आपको अभी प्राप्त होगा वो विवेक और भावना दोनों के बैलेंस के आधार पर प्राप्त होगा। और आप उस बात को दिल की गहराई से स्वीकार करेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। और ये विश्वास स्वयं उस ईश्वरीय शक्ति ने दिया। एक भाई भाई का खून करता है, ठीक है। आज जैसे देखिए मटके हैं, मटके में स्वच्छ जल रखा है, चांद का प्रतिबिंब मटके में पड़ता है, लेकिन चांद तो घड़े में नहीं है ना। वैसे परमात्मा के गुण आत्मा में प्रतिबिंबित हो सकते हैं निश्चित रूप से, क्योंकि हम उनके संतान हैं। लेकिन आत्मा ही परमात्मा बन जाए ऐसा नहीं हो सकता। ये कोई डिग्री नहीं है कि आप पढ़ाई करें और आपको डिग्री प्राप्त हो गई और आज से हम कहें आप परमात्मा हैं। नहीं, ये कोई डिग्री नहीं है। तो ये भावनात्मक सत्य तो हो ही गया। हम कहते भी हैं कि जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा का इस धरा पर अवतरण होता है। अब ये लाइन ले लीजिए, होता है माना वो नहीं है, कण कण में है अगर, ये भावना हो गई। लेकिन अगर वो यही है तो ये बात क्यों कहते फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। कौन से युग में वो परमात्मा आते हैं, आगे के आपके सेशन जो होंगे उसमें आपको वो बात पता चलेगी। तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सर्वव्यापी भावनात्मक सत्य। और इस भावना को जरूर स्वीकार कीजिए। साकार रूप ही परमात्मा का है और परमात्मा निराकार है, इन दोनों बातों को हम एक साथ लेते हैं। आज कलयुगी दुनिया में भी किसी के अंदर बहुत गुण होते हैं ना, तो आपके मुख से क्या निकलता है, क्या निकलता है, जैसे कि ये देवता है, है ना? कहते हैं आप बहुत मतलब इतना मीठा बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, कभी गुस्सा नहीं करते, जैसे कि ये देवता है। तो आपने कलयुग में भी किसी को ये टाइटल दिया ना। अब देखिए परमात्मा ऐसी एक सृष्टि की स्थापना करते जहां सब दैवी गुणों वाले होते हैं, लेकिन ये कोई चमत्कार ऐसा नहीं होता कि ऐसे हाथ दिखाया और सब देवता बन गए फटाफट। मैं बचपन में ना जय संतोषी माँ मूवी देखी तो मुझे अच्छा लगा कि कुछ काम नहीं करना पड़ता, संतोषी माता को याद करो और खट्टा नहीं खाओ, फटफट बर्तन भी धुल जाते हैं, जम जाते हैं अपने स्थान पर, वाह, झाड़ू पोछा भी नहीं करना, कपड़े भी नहीं धोना, घर का सारा काम हो जाए, केवल खट्टा नहीं खाना है। लेकिन जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो महसूस हुआ कि नहीं, खट्टा खाना वो बात नहीं है, कड़वा नहीं बोलना है। जब हम क्रोध करते ना अंदर एहसास होता है कि वो परम शक्ति के प्यार का मुझे अनुभव नहीं हो रहा आज, और जब सबके साथ प्रेम से रहते ना तो अंदर ऐसा लगता है कि जैसे कि प्रेम टपक रहा है। और किसी ने मुझसे पूछा था एक बार कि आप अपने जीवन में किस बात को महत्वपूर्ण स्थान देती हैं, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के ही, तो किसी ने कहा हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, किसी ने कहा यहाँ की पॉजिटिव थिंकिंग की क्लासेस करते हैं, मुरली सुनते हैं जिसको हम लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज में मुरली कहते हैं, कई उत्तर मिले। तो मैंने कहा कि मैं अपने जीवन में प्रेम को महत्वपूर्ण स्थान देती हूँ, क्योंकि मुझे अनुभव होता है कि जैसे ही प्रेम की गहराई में उतरे रचना से भी, तो उस परम सत्य का अनुभव होने लगता है। क्रोध किया उसी क्षण नरक, प्रेम से रहे उसी क्षण स्वर्ग, ये अनुभूति होती है। तो उत्तर की गहराई, अब हम सर्व धर्म मान्य की ओर चल रहे हैं। और मैंने कहा था जिस बात को सभी धर्म के लोग स्वीकार करें वो उत्तर निकल करके आएगा। अब आपको बोलना है, मैं प्रश्न करूंगी। अच्छा, बिल्ली का बच्चा कैसा होता है? जोर से बोलना, पूरी आवाज सुनाई देनी चाहिए। बिल्ली का बच्चा, एक साथ बोलना, बिल्ली का बच्चा। अच्छा, बंदर का बच्चा, हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा, शेर का बच्चा, मनुष्य का बच्चा, परमात्मा का बच्चा। इसको भी जोर से बोलो ना जरा, परमात्मा का बच्चा। आपने कहा मनुष्य का बच्चा, मनुष्य जैसा, ठीक। तो ये शरीर है, ये शरीर माता पिता के और प्रकृति की देन हुई, क्लियर। परमात्मा का बच्चा परमात्मा जैसा, मॉर्निंग में बहुत अच्छे से इस बात की गहराई में आप गए। अब इस शरीर को आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको शरीर दिखाई दे रहा है, अब इसको चलाने वाली सत्ता दिखाई दे रही है। अभी इस शरीर में से वो सत्ता निकल गई, अब भी निकली तब भी आपको दिखाई दी क्या? बस डॉक्टर ने कहा कि डेथ हो गई है। कोई पेशेंट बहुत खराब हालत में है तो डॉक्टर ने कहा जल्दी से पेशेंट को अंदर लाओ। जैसे ट्रीटमेंट चल रहा था आत्मा शरीर से निकल गए, तब डॉक्टर क्या कहते हैं, डेड बॉडी को बाहर ले जाओ, ठीक है। पहले क्या कहा, पेशेंट को लाओ, आत्मा निकल गई, डेड बॉडी को ले जाओ। तो वो आत्मा न तो डॉक्टर को दिखाई दी, न जो आसपास थे न तो उनको दिखाई दी, लेकिन मूमेंट खत्म, हार्ट का और कई अन्य फंक्शंस समाप्त। तब कह दिया कि आत्मा ने देह का त्याग कर दिया। तो परमात्मा का बच्चा परमात्मा जैसा, तो जब आत्मा न दिखाई देने वाली सत्ता है तो परमात्मा भी, परमात्मा भी न दिखाई देने वाली सत्ता होगी। लेकिन फिर भी अगर रूप निर्धारित करें तो आप ऊपर में हमेशा, जहां भी हमारे आप मेडिटेशन सेंटर पे जाएंगे तो एक सिंबल लाल लाइट गिफ्ट भी दी गिरीश भाई ने किसी किसी को। तो परमात्मा भी ज्योति स्वरूप, आत्मा भी ज्योति स्वरूप। अब आप कहेंगे कि ज्योति स्वरूप क्यों कहा दीदी? क्योंकि कईयों को, गौतम बुद्ध को, महावीर को, रामकृष्ण परमहंस को और हमारे संस्था के जो मुख्य लीडर रहे हैं फाउंडर, उनको भी ज्योति का साक्षात्कार हुआ है, ज्योति का। तो आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा के पिता भी कैसे होंगे? आत्मा के पिता भी कैसे होंगे? बोलिए, ज्योति स्वरूप। तो अब हम ये बात करते हैं कि क्या इस ज्योति को सर्व धर्म में स्वीकार किया गया है या नहीं? किया गया है। अब किया गया है तो राइट हो गए, पहली कसौटी सर्वधर्म मान्य। मैं क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हूं तो वहां मतलब सिस्टर्स हम लोग को बुलाती थी, तो हम लोग जाते थे 25 दिसंबर को, तो हम देखते थे कई छोटी मोमबत्तियां और एक बड़ी मोमबत्ती। और क्राइस्ट ने भी कहा है कि गॉड इज लव, लव इज गॉड, दैट इज ऑल। और क्रिश्चियन धर्म में कहते हैं गॉड इज कैंडल लाइट। क्राइस्ट ने भी कहा आई एम द सन ऑफ गॉड। तो भगवान एक मोमबत्ती के प्रकाश की तरह है। तो क्रिश्चियन धर्म में उस ज्योति को मान्यता मिली है, राइट। ठीक, अब हम बात करते हैं सिख पंथ की। क्या सिख पंथ में उस ज्योति को स्वीकार किया गया है? गुरु ग्रंथ साहब में बहुत अच्छे से वो बातें लिखी हुई है, एक नूर ते सब जग उपजा, एक नूर ते सब जग उपजा, एक ओंकार निराकार, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, जो अजूनी है, जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। तो ज्योति को मान्यता मिली है सिख पंथ में भी, राइट। अब हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो कहते हैं कि हमारे मुस्लिम भाई भी जब मक्का मदीना जाते हैं तो एक बहुत सुंदर गोल आकार का पत्थर उसको वो ऐसे करते हैं और वो भी कहते हैं नूर ए इलाही। तो नूर माना क्या? ज्योति। नूर माना क्या? ज्योति, प्रकाश। तो मुस्लिम धर्म में भी उस ज्योति को मान्यता मिली है। अगर आप जापान में जाएं तो जापान में भी अपने से 3 फीट की दूरी पर और 3 फीट की ऊंचाई पर एक गोल आकार का पत्थर रखकर उस पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं और उस पवित्र पत्थर को कहते हैं चिन कुंशे के, यानी शांति का दाता, करनी का पवित्र पत्थर। पारसियों की भी अग्यारी में यदि आप जाएं तो कहते हैं जैसे हिंदुओं के मंदिर होते हैं ना, तो वैसी उनकी अग्यारी होती है। और जब नई अग्यारी की स्थापना होती है तो वो पुरानी अग्यारी में से जलती हुई लौ का टुकड़ा लेकर के आते हैं और उसको कहते हैं होली फायर। होली माना पवित्र और फायर यानी आग, आग माना प्रकाश, प्रकाश माना ज्योति। ठीक है, तो ये तो हमने अन्य धर्मों की बात कही। हम लास्ट में लेते हैं हिंदू धर्म को। आप कहेंगे आपने हिंदू धर्म को लास्ट में क्यों लिया दीदी? क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक को छाट करके निकालना है ना, कि वो परम सत्य परमात्मा ज्योति स्वरूप वो कौन है। बहुत अच्छी एक बात, जब मैं स्कूल में थी तब एक बच्ची ने मेरे से पूछी थी कि दीदी हमारे घर में बहुत बड़ा मंदिर है और उस मंदिर में बहुत सारे देवी देवताओं के फोटो हैं, मेरे दादाजी, मेरी दादी है ना, मेरे माता पिता सब अलग अलग को, चाचा चाची हम सब ज्वाइंट फैमिली है, सब ने अपनी 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 प्यारी मूर्ति रखी हुई है और सब उनको नमन करते हैं। तो मैम मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैं किसको याद करूं। मुझे ये समझ में आता है कि कोई एनर्जी है, कोई पावर है, लेकिन वो एनर्जी कौन है जिनके साथ मैं कनेक्शन जोड़ूं? तो हमने कहा आना, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, हा? तो हम आपको डायरेक्ट कैसे उनके साथ एक कनेक्शन जोड़ना है। देखिए, हमने भी भक्ति की है, हम भक्ति को गलत नहीं कहते। मैंने पहले भी कहा कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा लक्ष्य बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये चाहोगे कि कब तक नर्सरी क्लास में बैठोगे? आओ ना भाई KG1 में, KG2 में, Class 1 में, धीरे 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 आगे बढ़ो। इसलिए कहा एक्सपेरिमेंट करो। तो क्या हिंदू शास्त्रों में ज्योति को मान्यता मिली है? बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। और अगर हम बात करें तो हिंदू धर्म ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, इंसानियत का धर्म है, मानवता का धर्म है, और सब धर्म में मानवता का ही संदेश दिया गया है। इसीलिए कहा कि एक ज्योति है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हुजूर एक है। हर मानव माटी का पुतला जीवन का आधार एक है। गहराई तक जाकर देखो हर धर्मों का सार एक है। एक वाहे गुरु एक परमेश्वर, गॉड और अल्लाह एक है। नाम भले ही अलग अलग हो, भक्तों के भगवान एक है। नाम रूप की बात छोड़ दो, इंसानों की जात एक है। मन से मन की तार जोड़ लो, सीधी सच्ची बात एक है। तो वास्तव में भारत का कोई भी ऐसा गांव या शहर नहीं होगा जहां पर उस ज्योति का यादगार ना हो। और भारत में 12 ज्योतिर्लिंग का बड़ा महत्व है। ज्योतिर्लिंगम ही कहते हैं, और उनके जितने भी नाम हैं, उनके आगे या तो नाथ अक्षर आ रहा है या तो ईश्वर अक्षर आ रहा है। पशुपति, सोम, केदार, विश्वनाथ या ईश्वर, महाकालेश्वर, विश्वेश्वर, घृष्णेश्वर, रामेश्वर, तो सर्व के नाथ या ईश्वर यही ज्योति है। रामेश्वरम में भी श्री राम ने ज्योति स्वरूप शिव की पूजा की थी। रामेश्वर, गोपेश्वर, सोमनाथ जो आके हमको सोम रस पिलाते हैं, और उसी ज्योति को आपको खुशी होगी, खुशी होगी। मैं लास्ट में वो गीत जरूर बजवाऊंगी, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली। क्योंकि मैं जिस दिन ना परमात्मा परिचय देती हूँ, परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा ज्ञान से, और जब आपको इस बात का निश्चय हो जाता है कि वो एक है, तो रियल में बहुत खुशी होती है अंदर में, है ना? ऐसा लगता है बस कनेक्शन जुड़ गया बच्चे का, और वो कनेक्शन के आधार पर अब परमात्मा प्रॉपर्टी का अनुभव करेंगे, अनुभव करेंगे। तो ब्रह्मा कुमारी में उसी ज्योति को हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। क्या कहते हैं? शिव बाबा। कोई दाढ़ी मूछ वाला बाबा नहीं, ठीक है? उस ज्योति स्वरूप को ही प्यार से बाबा। ये भगवान नहीं है जो आप स्वरूप देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट लीडर है। उन्होंने भी उसी ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव को याद किया। तो जैसे हम पिता को घर में बाबा कहते हैं, है ना, गुजराती में माँ को बा कहते हैं, है ना, तो ऐसे ही ऐसे शिव शिव नहीं कहेंगे। जब हम लोग मेडिटेशन करेंगे तो प्यार से उस परमात्मा को क्या कहेंगे? शिव बाबा। जैसे आप उसमें प्यार से बातचीत करते हैं, वैसे शिव बाबा से भी प्यार से बातचीत करते हैं। यही मेडिटेशन है, और इसमें समय का पता भी नहीं चलता। जैसे देखो, किसी से बहुत प्यार होता है ना, तो हम कभी घड़ी नहीं देखते, और एक डेढ़ दो घंटा हो जाएगा ना, क्योंकि आपके साथ बैठना इतना अच्छा लगता है कि पता ही नहीं चलता समय का। और किसी किसी के साथ हमें 2 मिनट क्या 1 मिनट भी भारी लगते हैं। तो जब हमारी बातचीत परमात्मा के साथ शुरू हो जाती है तो ऐसा लगता है खुदा दोस्त को मैंने सब दिल की बातें सुना दी। तो परमात्मा वो जो सर्वधर्म मान्य, तो उत्तर निकल करके आ गया कि वो ज्योति स्वरूप है और उन्हें सर्वधर्म में स्वीकार किया गया है। वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। ये कैसे पता चला? बड़ी गहराई है। हम बहनें आपको ये कहेंगे कि जब आप अपने शहर पर पहुंचे ना तो आगे भी इस कोर्स को कंटिन्यू करना, नहीं तो फिर नर्सरी के नर्सरी में ही रह जाएंगे। जाना है KG1 में किसको किसको जाना है? यहाँ ना केवल KG2 तक का ही कोर्स होगा, क्लास 1 का अपने शहर में जाकर के करना, ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाकर के। तो वो सर्वोच्च है, ये कैसे पता चला? क्योंकि हम कहते हैं देव देव महादेव, और शिवलिंग के ऊपर 3 बेलपत्र चढ़ाते हैं, यानी ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तीनों के रचयिता वो ज्योति स्वरूप परमात्मा। और इंग्लिश में कहते हैं गॉड, GOD, जी फॉर जनरेशन जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेशन ऑपरेटर एंड डी फॉर डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉयर। यानी ये 3 कर्तव्य परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा करवाते, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ठीक है, ये यादगार है 3 बेलपत्र का। बचपन में कभी मैं बेलपत्र तोड़ने गई तो 2 का सेट लेके आ गई, तो दादी ने कहा 3 का सेट लेके आओ, जाओ 3 ही चढ़ाते। मैंने कहा 2 चढ़ाओ 1 चढ़ाओ 4 चढ़ाओ क्या फर्क पड़ता है, नहीं 3 बेलपत्र ही चढ़ाते हैं। तो मुझे ब्रह्मा कुमारी इसमें आके इसका रहस्य पता चला कि ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव है। सर्वोपरि है, 5 कसौटी पर कस रहे हैं, सर्वोपरि है। ये कैसे पता चला? क्योंकि शिव के आगे एक अक्षर आता है सदाशिव, सदाशिव और स्वयं भू, जो स्वयं अवतरित होते हैं, जो एवर प्योर है। और गीता में भी एक श्लोक बहुत अच्छा आता है और वो शिव के ऊपर है कि ज्योतिष्याम अपितज ज्योतिस्तमस परमुच्यते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम इति सर्वस्य विशिष्टतम। और सर्वस्य विशिष्टतम उस भूत महेश्वर को। और एक श्लोक कि अवजानंती मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो मम भूत महेश्वरम। भूत महेश्वर किसको कहा गया? उस ज्योति को। और अर्जुन को भी परमात्मा ने दिव्य दृष्टि के द्वारा, दिव्य बुद्धि के द्वारा उस ज्योति का साक्षात्कार करवाया। तो साक्षात्कार यानी अनुभव। तो आपको भी अभी परमात्मा से ही दिव्य दृष्टि प्राप्त हो रही है और दिव्य बुद्धि प्राप्त हो रही है, जिसके आधार पर आप अनुभव करेंगे कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। दोनों का बैलेंस बने रहने दीजिएगा, विवेक और भावना, विवेक और भावना। सर्वज्ञ है, ये कैसे पता चला? कि वो ज्योति स्वरूप जो है वो सर्वज्ञ है। तो देखो 3 लकीर बताते ना शिवलिंग के ऊपर और बीच में एक बिंदी आंख बताई जाती, यानी 3 लोकों और 3 कालों का ज्ञान देने वाले स्वयं ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव बाबा हैं। सब प्रतीकात्मक रूप हैं, लेकिन जब हम इसको आध्यात्मिकता के द्वारा समझते हैं तो कनेक्शन बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। और सर्व गुणों में अनंत है, ये कैसे पता चला? 5वीं कसौटी, क्योंकि जितने भी उनके नाम है ना वो कर्तव्यवाचक नाम है, गुणवाचक नाम है। हमारे नाम कर्तव्यवाचक या गुणवाचक नाम नहीं होते। नाम होगा शांति मचाती होगी, अशांति है ना। एक दृष्टांत बताते कि एक बार एक बच्चा, उसका नाम था छज्जू, तो उसने अपनी माँ को कहा कि क्या मेरा नाम छज्जू रख दिया, सब छज्जू छज्जू बोलते रहते हैं, मेरा नाम बदल दो। तो कहा ठीक है, तुम थोड़ा देख के आओ, पूछ के आओ, जो नाम तुमको अच्छा लगेगा वो नाम तुम्हारा रख देंगे। तो वो गया तो एक स्त्री धान कूट रही थी, तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा लक्ष्मी। तो कहा अच्छा। फिर वो आगे गया तो एक भिखारी भीख मांग रहे थे, है ना, तो उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा धनपत लाल, है ना। अच्छा, फिर वो आगे बढ़ा तो एक अर्थी जा रही थी, तो पूछा ये किसकी अर्थी जा रही है, तो कहा ये अमरनाथ की अर्थी जा रही है। तो इस बच्चे के अंदर विचार आया कि लक्ष्मी कूटे धान, धनपत लाल मांगे भीख, अमरनाथ भी चल बसे, तो मेरा छज्जू नाम है ठीक, है ना। तो उसको अपना छज्जू नाम है ना ठीक लगने लगा। तो देखो हमारे नाम कर्तव्यवाचक नहीं है, लेकिन शिव बाबा के नाम कर्तव्यवाचक है। वो सोमनाथ है, सोम रस पिलाते हैं, ज्ञान का रस पिलाते हैं, महाकालेश्वर है, काल के चक्र से छुड़ाते हैं। यानी क्या हम जन्म मरण में नहीं आएंगे क्या? आत्मा वस्त्र तो बदलेगे, लेकिन आत्मा वस्त्र बदलेगे इस बात का ज्ञान और अनुभव, इस आधार पर भी प्यार तो सबसे होता है। देखो चाहे वो माता पिता हो, चाहे पति पत्नी हो, भाई बहन हो, लेकिन जिस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में बातें आती हैं, तो परमात्मा शिव ने हमें बहुत गहराई से एकदम सरल हिंदी में इन बातों को समझाया कि अपने जीवन में ध्यान, ज्ञान और कर्म फिलॉसॉफी को समझ करके, अपने जीवन में सदा खुश रह करके हमें खुशी बांटनी है। मुझे डॉक्टर साहब की बात बहुत अच्छी लगी थी कि देखो रोना आता है ना तो रो लो, और रूखे सूखे भी मत बनो कि एकदम हम ध्यानी बन गए हैं तो रूखे सूखे से हो गए। ध्यान ये नहीं सिखाता, ध्यान परमात्मा से भी प्यार करना सिखलाता, साथ साथ उसकी रचना से भी प्यार करना सिखलाता। और रचना में किसी के साथ संबंध बिगड़े हुए हैं तो परम सत्य के साथ संबंध नहीं जोड़ पाएंगे। तो लास्ट में भी हम मेडिटेशन करेंगे, लेकिन एक मिनट के अंदर आप लोगों से पूछ लेती हूँ, जो परिचय मिला क्लियर हो गया होगा मुझे ऐसा दृढ़ विश्वास है। आप कौन हैं तो क्या कहेंगे? आत्मा, पक्का ना, शरीर तो नहीं है, आत्मा है। अच्छा, आत्मा का पिता कौन है आज जो परिचय दिया? नाम क्या है उनका? रूप क्या है उनका? निराकार कह दिया गया, लेकिन अगर रूप निर्धारित करें तो ज्योति स्वरूप है। और कहते हैं एक डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, उसी प्रकार ना हमने 33 करोड़ भगवान कह दिए, क्योंकि भगवान क्या बनाता है? अपने जैसा बना देता है, देवता बनाता, लेकिन हमने कह दिया 33 करोड़ भगवान, क्योंकि भगवान ने, शिव बाबा ने अपनी क्वालिटी, जो उनके गुण है वो सागर है ना, तो हमारे अंदर भी भर दी। तो नाम शिव बाबा, रूप ज्योति बिंदु, और धाम कहते ना ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, है ना, और ऊंचा तेरा धाम, सब कुछ ऊंचा, नाम भी, काम भी, धाम भी, और वो है परम धाम, शांति धाम। तो हम आत्माएं भी वहां की रहने वाली, और हमारे पिता भी वहीं के रहने वाले हैं। तो हम लोगों का तो टेम्पररी एड्रेस भी है ना, और परमानेंट एड्रेस कौन सा हो गया? परम धाम, शांति धाम। और शिव बाबा का परमानेंट एड्रेस है परम धाम। लेकिन आगे का एक भी सेशन जो मेडिटेशन वाला है, आप सब सेशन अटेंड कीजिएगा, लेकिन विशेष जो मेडिटेशन वाले सेशन चलेंगे उसमें सब बातें आपको क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, अब परिचय मिल गया तो लेटर लिखिए, तो आपका लेटर क्या हो जाएगा, परमधाम पहुंच जाएगा, है ना। एक बार हमारी लौकिक माँ ग्वालियर गई हुई थी, तो हमने बहुत प्यार से माँ को लेटर लिखा और लेटर बॉक्स में डाल करके आ गए। शाम को पिताश्री आए तो हमने कहा आज हमने आई को पत्र लिखा है, तो कहा अच्छा एड्रेस, तो मैंने कहा अरे एड्रेस तो लिखा ही नहीं मैंने, तो लेटर कैसे पहुंचेगा, है ना। तो उसी प्रकार परमात्मा को याद जरूर करते थे लेकिन एड्रेस नहीं पता था, और अलग 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 रूपों में भी याद किया तो भगवान ने वो भावना पूर्ण की, लेकिन जब डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है तो हम सर्व प्राप्तियों का जीवन में अनुभव करने लगते हैं। जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री हमारे पिता ही हों, प्रधानमंत्री मेरे पिता ही हों, तो मैं उनसे फोन में बात कर सकती हूँ, मैं घर जा सकती हूँ, बहुत प्यार से मुझे क्या मिलने का समय लेना पड़ेगा अपने पिताश्री से, नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरे पिता हैं। उसी प्रकार हम मेले में भटक गए थे तो उस परम शक्ति परमात्मा से दूर हो गए थे, हम अधिकारी थे, प्यार के शांति के सब कुछ हमारे पास था, लेकिन दूर हो गए ना, तो फिर हम भीख मांगने लग गए शांति। मैंने बताया ना दीदी ने, रॉयल भिखारी बन गए, शांति के प्रेम के भिखारी बन गए। अब कनेक्शन जुड़ गया तो वो प्यार के सागर तो हम प्यार के स्वरूप, वो शांति के सागर तो हम शांत स्वरूप। तो अब इधर उधर शांति और प्रेम ढूंढने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, स्वस्वरूप में टिके और उस परम शक्ति परमात्मा को याद करें, ठीक है। चलिए लास्ट में हम पुनः उस परम शक्ति परमात्मा को याद करेंगे, लेकिन भाइयों से अनुरोध करूंगी कि 2 मिनट के लिए, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इस गीत में, हम लोग थोड़ा सा क्लैपिंग करेंगे और अंदर में बहुत खुश होंगे कि आज मुझे उस परम शक्ति परमात्मा का, परम सत्य का परिचय प्राप्त हो गया। नहीं तो पहले वो गीत बजा दो, लास्ट में मेडिटेशन करते। चलिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, आज से पहले आज से ज्यादा।
पहले आज से ज्यादा, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, इतनी सुहानी ऐसी मीठी, इतनी सुहानी ऐसी मीठी घड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले। संजो कहे या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले कहें या किस्मत का लेखा, हम जो अचानक मिले हैं, मन चाहे साथी पाके हम सब के चेहरे, देखो तो कैसे खिले हैं। ओ तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, इन तकदीरों को जोड़ दे ऐसी, कड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले।
बस एक मिनट, साइलेंस साइलेंस। शिव बाबा, आज मुझे आपका परिचय मिला। मैं आत्मा स्वयं को बहुत भाग्यवान मानती हूँ कि जिसे दुनिया ढूंढ रही है वो है मेरा। मेरे जीवन की खोज समाप्त हो गई। विश्व का नियंता है मेरा, विश्व का पालनहार है मेरा। वाह मेरा भाग्य, वाह। इससे ऊंचा भाग्य और किसी का नहीं होगा जो इस ज्ञान सरोवर में आकर वाकई में मैं आत्मा डुबकी लगा रही हूं, सागर की गहराई में जा रही हूं। अनुभव कीजिए चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश, मस्तक के मध्य मैं आत्मा चमक रही हूं, और परम धाम से ज्योति बिंदु शिव बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही है। प्रातः काल के सूर्य के किरणों की भांति मैं शांत स्वरूपात्मा, मैं शांत स्वरूपात्मा, आज मेरा अंतर्मन उस छलिए को पुकार रहा है इस भाव के साथ, जरा सामने तो आओ छलिए, छुप छुप चलने में क्या राज है, यूं छुपना सकेगा परमात्मा मेरी आत्मा की ये आवाज है।